प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सो संधी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का हाँ तू सो संधी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। बना खुशबूदार तेरे समान, हम करूं मैं तेरी ए प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों बाइबल में से इफिसियों की पत्री नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में अध्याय एक उसके चार पद से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके वचन में से फिर से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जीवन आज आपके वचन के द्वारा आशीषित होने पाए। आप हम सबके साथ हो, हम पर अनुग्रह करें। प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ इफिसियों के पत्री एक अध्याय उसके चार पद को पढ़ें। लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यह पद और आगे आने वाले पद धर्मशास्त्र के अत्यधिक कठिन पदों में से हैं। इन्हें समझना बहुत कठिन है। प्राकृतिक मनुष्य के लिए ये अस्वीकार्य है और आम विश्वासी इसे प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने में कठिनाई का सामना करते हैं। यद्यपि लेख स्पष्ट है, उनका निहित सत्य समझना कठिन है। ये पद अखरोट के समान है जिन्हें तोड़ना कठिन है, परंतु इनमें अच्छाइयां समाई हुई हैं। जैसा एक संयोजक है जो पद तीन के अर्थ को स्पष्ट करता है। हमें जो आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं वे परमेश्वर की इच्छा से हैं। सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य से हैं। यह संसार वरन संपूर्ण जगत सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के निमित्त काम करता है, जैसा पिछले पद में की तिगुना आशीषों की ओर संकेत करता है। पद तीन में हम देखते हैं मैं शब्द होना आवश्यक है। सबसे पहले सब आत्मिक आशीषों में, जो स्वर्गिक स्थानों में, और अंत में मसीह में। कहने का अर्थ है कि अपनी आशीषों पर ध्यान दो और समझो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, और तब विश्वास में आगे बढ़कर उसे थाम लो और आज उस ऊंचे स्तर पर वास करो जहां परमेश्वर ने आपको उठाकर रखा है। उसने आपको पुत्र बनाया है और सब आत्मिक आशीषें दी हैं। हमें आज संसार में ऐसा ही जीवन जीना है। मेरे मित्रों, यह सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था। पिता परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा तैयार किया, पुत्र परमेश्वर ने कलीसिया का मूल्य चुकाया, और पवित्र आत्मा परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। हमारे सब आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु का पिता हमारा परमेश्वर है। वह हमारा ध्यान आदिकाल की ओर ले जाता है कि हमें यह समझ में आ जाए कि उद्धार पूर्ण रूपेण परमेश्वर से ही प्राप्त है, हमारे किसी भी कर्म का परिणाम नहीं है। जी हाँ, आप और मैं अपने उद्धार के न तो प्रवर्तक हैं और न ही प्रायोजक हैं, न ही पूर्ण करने वाले हैं। यह पूर्ण रूप से परमेश्वर का काम है। लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। परमेश्वर ने हमारे उद्धार की योजना आदिकाल से बनाई हुई है, हमारे इस संसार में आने से बहुत पहले। प्रभु यीशु ही है जो समय की पूर्णता पर इस संसार में आया और समय की ही पूर्णता पर क्रूस पर मरकर हमारे उद्धार को पूरा किया। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसका बोध करवाता है। वह हमें मसीह में विश्वास और परमेश्वर के उद्धारक अनुग्रह के ज्ञान का बोध करवाता है जो मसीह यीशु में प्रकट किया गया है। वर्षों पूर्व मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक बालक किसी रूढ़िवादी कलीसिया की सदस्यता लेना चाहता था। सेवकगण उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि उसने उद्धार कैसे पाया। उसने कहा, मैंने अपनी भूमिका निभाई और परमेश्वर ने अपनी भूमिका निभाई। सेवकों ने सोचा कि यहाँ वह पकड़ा गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारी भूमिका क्या है और परमेश्वर की भूमिका क्या है? उसका उत्तर था, मेरी भूमिका थी पाप करना। मैं परमेश्वर से दूर भागा, जितना तेज मेरे विद्रोही मुझे ले गए और मेरी पापी मन ने अगुवाई की, मैं उससे दूर भागा, परंतु आप जानते हैं वह मेरे पीछे भागा जब तक कि उसने मुझे पकड़ ना लिया। मेरे प्रियो, किसी भी धर्म विज्ञान में आपको यह नहीं मिलेगा। परमेश्वर ही है जिसने उद्धार का काम किया। हमारा काम तो पाप करना था। डॉक्टर हेनरी ए आयरनसाइड ने एक कहानी सुनाई। एक छोटे बालक से पूछा गया, क्या तुमने यीशु को पा लिया है? उस बालक ने उत्तर दिया, सर मैं नहीं जानता, वह खो गया था और मैं भी खो गया था, परंतु उसने मुझे खोज लिया। मेरे मित्रों, आप यीशु की खोज नहीं करते, वह आपकी खोज करता है। वही तो खोई हुई भेड़ को खोजने गया था और उसी ने उस भेड़ को अंत तक खोज निकाला। परमेश्वर ने विश्वासियों को संसार की नींव डालने से पूर्व ही मसीह में चुन लिया था। इसका अर्थ है कि आपने और मैंने चुनाव नहीं किया है। उसने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम अच्छे हैं या कोई अच्छा काम करेंगे, परंतु उसने हमें चुना कि हम कुछ अच्छा कर पाएं। संपूर्ण चुनाव परमेश्वर की बुद्धि और भलाई के परम अधिकार पर है। चार्ल्स स्पर्जन ने एक बार कहा, परमेश्वर ने मेरे संसार में आने से पहले ही मुझे चुन लिया, क्योंकि यदि वह मेरे आने तक रुकता तो मुझे कभी नहीं चुनता। परमेश्वर ही ने हमारा चुनाव किया है, आपका चुनाव किया है, मेरा चुनाव किया है, हमने उसको नहीं चुना है। प्रभु यीशु ने अटारी में अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, डॉक्टर जी कैम्बेल मॉर्गन ने कहा, इस कारण अब दायित्व उस पर है, क्योंकि उसने स्वयं चुनाव किया है, वही निभाएगा भी। यही तो इसे अद्भुत बनाता है। इसराइल ईश्वरीय चुनाव का उदाहरण है। आमोस 3 अध्याय उसके 1 से 2 पद में हम पढ़ते हैं, हे इसराइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूँ। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर ने इसराइल को समय पर चुना था, परंतु कलीसिया को आदिकाल से ही चुन लिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने अनादि समय से यह चुनाव किया था। इसलिए उसके कार्यक्रम में सुधार लाने या उसका उद्देश्य बदलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वह आदि काल से ही अंत को जानता है। हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 8 पद में इसे पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने सब कुछ एक उद्देश्य के निमित्त किया है कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें। परमेश्वर ने पवित्र करने के लिए चुना है। वह हमारा उद्धार करता है, हमारा शोधन करता है कि हम पवित्र हो जाएं। यह उसके उद्देश्य का व्यवहारिक पक्ष है। यह विश्वासी के आंतरिक जीवन से संबंधित है। परमेश्वर के चुनाव की मांग है पवित्र जीवन। अब आप मुझे यह न बताएं कि आप चयनित जन हैं, अर्थात चुने हुए जन हैं, और आप अनुग्रह द्वारा उद्धार पा चुके हैं, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 1 और 2 पद में देखें, परमेश्वर इसका प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आप अनुग्रह को पाप करने की अनुज्ञप्ति नहीं मान सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप पापों में जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उद्धार से रहित पापी हैं। उद्धार प्राप्त पापी अपने जीवन में परिवर्तन प्रदर्शन करते हैं। परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए नहीं चुना, परंतु इसलिए भी चुना कि हम निर्दोष ठहरें। यह नकारात्मक पक्ष है। मसीही विश्वासी परमेश्वर के समक्ष निर्दोष देखा जाता है। इसका भी उदाहरण इसराइल है। परमेश्वर ने विलाम को इसराइल को श्राप देने और उनमें दोष खोजने की अनुमति नहीं दी थी। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के 21 पद में हम पढ़ते हैं, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इसराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उसमें राजा की सी ललकार होती है। जी हाँ, परंतु यदि आप इसराइल के शिविर में जाते तो देखते कि परमेश्वर ने उनमें दोष पाया और उन्हें दंड दिया। वह उनकी बस्ती को शुद्ध और पवित्र कर रहा था। परमेश्वर ने आपको चुना कि पवित्र करे और निर्दोष सिद्ध करे। इसका अर्थ है कि आपका जीवन बदल दिया गया है। यदि आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई न दे तो इसका अर्थ है कि आप चुने हुए नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान का जीवन पाप के कलंक और दोष से रंजित न हो। उसने हर प्रयास किया कि उन्हें हर प्रकार के दोष से मुक्त करे। पहला योहन्ना के पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में वह कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रसंगवश यह सदा सर्वदा के लिए सीमित प्रायश्चित अर्थात केवल चुने हुओं के लिए मसीह के मरने के विचार का निराकरण कर देता है। पहला योहन्ना का यह पद स्पष्ट करता है कि मसीह सारे जगत के पापों के लिए मरा, न कि किसी व्यक्ति विशेष या देश के लिए। आप चाहे जो भी हो, आज परमेश्वर आपको वैधानिक निमंत्रण देता है कि मसीह यीशु आपके लिए मरा है। आप छिप कर नहीं कह सकते, मैं चुने हुओं में से नहीं हूँ। यदि आप उसकी पुकार सुन ले तो आप चुने हुए हैं, परंतु न सुनने के लिए भी आपको पूरी स्वतंत्रता है। यह एक महिमामय और अद्भुत बात है कि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर यहाँ नीचे हमें चुने और हमारा उद्धार करे। मैं इसको समझने का दावा तो नहीं करता, परंतु इसमें विश्वास अवश्य करता हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमारे सामने एक विशाल मार्ग का चित्र रखा जिसके एक किनारे पर छोटा सा द्वार है जिस पर लिखा है यूहन्ना 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 10:9 पद में लिखा है, द्वार मैं हूँ। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह चौड़ा रास्ता जिसमें अधिकांश लोग चल रहे हैं धीरे धीरे सकरा होता जाता है और अंत में विनाश की ओर पहुंचाता है। यदि आप चाहें तो इस मार्ग पर चल सकते हैं, परंतु यदि चाहें तो मार्ग में परिवर्तन ला सकते हैं। आप यह निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। यूहन्ना 6:37 पद में लिखा है, जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। आप इस सक्रिय मार्ग पर चल सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसका प्रवेश द्वार सक्रा है, परंतु मार्ग धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 पद में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। आप चौड़े मार्ग की चर्चा करते हैं तो वह चौड़ा रास्ता सक्रिय द्वार के बाहर है, परंतु आपको चुनना है। जो आएगा इसमें आप भी हैं। यह एक वैधानिक निमंत्रण है। डीएल मुडे ने कहा, जो चाहते हैं वे चुने हुए हैं और जो नहीं चाहते वे चुने हुए नहीं हैं। अब चुनाव आपका है। प्रभु यीशु ने तो निमंत्रण दे दिया, जो चाहे सो आए। अब आप यह न कहें कि आप रह गए या बच गए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नष्ट न हो। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, जो कोई मैं हूँ, आप हैं, सारा जगत है। यहाँ आप अपना नाम लिख लें। अब क्योंकि मनुष्य में चुने हुए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसकी सूची दी जाए। आपको यह कहने का अधिकार नहीं है कि आपका नाम चुने हुओं में नहीं है। यदि आप अपना हृदय खोल दें तो आप भी आ सकते हैं। आपको बस यही करना है। मैं आज के इस विचार को नहीं मानता कि आपके अपने मानसिक प्रतिबंध हैं। समस्या तो यह है कि आपके जीवन में पाप है और बाइबल इसे दोषी ठहराती है। यदि आप मसीह के पास आते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको पाप से मुंह मोड़ना होगा, परंतु कुछ लोग पाप से फिरना नहीं चाहते हैं, उसमें चुन लिया। परमेश्वर का वचन बार बार ईश्वरीय चुनाव पर बल देता है। दूसरा थिस्सलुनीको 2 अध्याय उसके 13 और 14 पद में पौलुस कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उनको दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हम पहला पत्रस 1 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर वह कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। यहां रोचक बात तो यह है कि चुनाव और शोधन साथ साथ प्रतीत होते हैं और मसीह यीशु में ही है। यदि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है तो इसलिए नहीं कि आप अच्छे हैं, परंतु इसलिए कि आप अच्छे नहीं हैं। रोमियो के पत्री 9 अध्याय उसके 14 से 16 पद में पौलुस इस विचार को अति अद्भुत रूप से कहता है। इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, मूसा मैं तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर दूंगा, परंतु इसलिए नहीं कि तू मूसा है और इसराइल का मुक्तिदाता है, मैं केवल उन्हीं पर दया दिखाता हूँ जिन पर दिखाना चाहता हूँ और उन्हीं पर कृपा करता हूँ जिन पर करना चाहता हूँ, उन पर नहीं जो इच्छा रखें या कर्म करें, परंतु दया दिखाना मेरी इच्छा पर निर्भर है। क्या आप परमेश्वर की कृपा का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं? आपको इसके पास आना होगा। मेरे विचार में इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रेरितों के काम 27 अध्याय में है। पौलुस समुद्री यात्रा में था और जहाज तूफान में फंस गया। नाविकों ने बहुत सा सामान पानी में फेंक दिया। तब पौलुस जहाज के कप्तान के पास जाकर के बोला, जिसे हम प्रेरितों के काम 27 अध्याय 22 से 24 पद में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढारस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। यह परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान है, यह चुनाव है। परमेश्वर ने चुना कि जहाज के सब यात्री सुरक्षित रहें। कुछ ही समय बाद पौलुस ने देखा कि कुछ नाविक सुरक्षा नाव उतारकर भूमि की ओर पहुंचने का विचार कर रहे थे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय उसके 31 पद में पौलुस ने सूबेदार से कहा, यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। यह मनुष्य की ओर से था न कि परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर जानता है कि चयनित अर्थात चुने हुए जन कौन है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। किसी ने आकर स्पर्जन से कहा, यदि मेरा विश्वास आपके तुल्य होता तो मैं प्रचार नहीं करता। आप स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए हैं, परंतु आप प्रचार करते हैं कि सबका उद्धार हो सकता है। स्पर्जन का उत्तर था, वे सब उद्धार पाएंगे। यदि परमेश्वर अपने चुने हुओं को पीठ पर पीली पट्टी लगा देता तो मैं उनकी कमीज उठाकर देखता और केवल पीली पट्टी वालों को ही सुसमाचार सुनाता, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है। उसने मुझसे कहा कि सबको सुसमाचार सुनाओ और जिसकी इच्छा हो वह आ जाए। अतः मैं परमेश्वर का जो चाहे सुसमाचार सुनाऊंगा। हमें इसी सुसमाचार का आज प्रचार करना है। मेरे मित्रों, किसी ने कहा कि स्वर्ग के द्वार पर हमारी ओर लिखा है, जो चाहे सो प्रवेश करे, द्वार मैं हूं, मेरे ही द्वारा यदि मनुष्य चाहे, अर्थात आप आ सकते हैं और चारागाह और जीवन पा सकते हैं। और जब आप स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे तब आप पलट करके देखेंगे तो द्वार पर लिखा होगा, जगत की नींव डालने से पूर्व उसमें चुने गए। मैंने अभी तक द्वार की उस ओर नहीं देखा है, अतः मैं परमेश्वर को ही उसकी कलीसिया की योजना बनाने का अधिकार देता हूँ। मुझे मेरे एक मित्र ने अपने घर का नक्शा दिखाया। उस घर की अभी केवल नींव ही डाली थी, परंतु उसने मुझे उसका संपूर्ण विन्यास नक्शे में दिखाया, और जब घर बन जाने के बाद हम वहां गए, वह ठीक वैसा ही था। उन्हें नक्शा बनाने का अधिकार था और उन्होंने अपनी योजना के अनुसार नक्शा बनाया था। यह जगत परमेश्वर का है, यह कलीसिया उसकी है। उसका नक्शा क्या है? उसने हमें मसीह में जगत की नींव डालने से पूर्व चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हो। प्रेम में पद 4 का नहीं पद 5 का अंश है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें इस बात का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको पहले से चुन लिया है। उद्धार सबके लिए है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारे इस देश में या अन्य देश में, जहां भी लोग पाए जाते हैं, उद्धार सबके लिए है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि द्वार मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद में वचन कहता है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, उस महान शांति और आनंद को प्राप्त करें जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। यदि आज आपने इस वचन को सुना है, आप निर्णय अवश्य लें, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके निकटता में आना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता करें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं।